बहुत स्पष्ट रूप से आदेश है कि यदि श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने के लिए कोई वक्ता बैठा है तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रीमद् भक्ति के बिना, हर भक्ति के बिना किसी दूसरे प्रकार से करता है तो वह श्रीमद् भागवत का कभी भी मूल अर्थ कहीं ही नहीं करता। श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने के लिए बैठे तो उसे एकमात्र भक्त को ही अपने मुख पे लाना पड़ेगा, भक्त के अतिरिक्त एक शब्द भी अन्यत्र कुछ भी नहीं लाना है। श्रीमद् भागवत का प्रयोजन एकमात्र भक्त में ही है। श्रीमद् भागवत के प्रतिज्ञा वाक्य में, प्रारंभिक वाक्य में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दी गई कि धर्म प्रोधित पंचवोत्त परमो निर्मत्सवान सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र सेवन पापत्रयम नीलिनम। श्रीमद् भागवत में प्रोधित कैतव धर्म का निरूपण है, जहां पर के फल में मोक्ष वांछा सबसे अधिक प्रधान है, भुक्त मुक्ति की स्पृहा एक पिशाची है और यह पिशाची कहीं भी छिपी हुई बैठी रही तो हम जो कुछ भी खाएंगे खाएंगे तो हम परंतु वह उसका फल मिल जाएगा उस पिशाची को। किसी के ऊपर पिशाची चढ़ जाए और वह पिशाच वो व्यक्ति यदि भोजन करने के लिए बैठे और 10 व्यक्ति जितना भोजन कर रहे हैं उतने भोजन को अकेला कर जाए तो उस व्यक्ति ने थोड़ी खाया, वो तो वो पिशाची खा देती है। इसी प्रकार भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रखते हुए जिन्हें कहीं भी भुक्ति और मुक्ति का अनुसंग है और शिव भागवत की व्याख्या की तो जो कुछ भी फल है उस फल को वह पिशाची खा जाएगी, श्रीमद् भागवत का मुख्य फल प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत मोहिनी स्वरूप हो। श्री कृष्णा से गर्भपात निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है वो मोहिनी स्वरूप है। आज मध्यावसाने से वैराग्याख्यान संयुतम हरि लीला तथा जलाता मृतानंदित सत्तुरम
सत्तुरम।
इस श्लोक को यहां पर जरूर लेना पड़ेगा। जो मूल श्लोक है कैवल्य का प्रयोजन हम इससे पहले वाला श्लोक है और इसको छोड़े बिना इस कैवल्य के प्रयोजन की व्याख्या हो नहीं सकती।
हरि लीला तथा
इसको जीवन में हो ही नहीं सकती है। इस श्लोक की व्याख्या हरिलीला कथा ग्राता मृतानंदित सत्तुरम, जहां पर सत्तुरम कहा सूर्य शब्द दिया वहां पर एक संपूर्ण रूपक अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाता है। हरिलीला कथा ग्राता मृत, अमृत और सत्तुर इन दो शब्दों को लेकर के यह पूरा रूपक मोहिनी स्वरूप का पूरा रूपक अपने आप स्फुरित हो जाता है। ग्रंथकार का यह तात्पर्य अपने आप उसके हृदय में स्फुरित हो रहा है, उसके वचनों से स्फुरित हो रहा है। किसानंद परोध मंथ जलितम सद्भक्त गोष्ठ्याम कृपा मोहिनिया परेशितम रसमताम वृंदेन पत्राधित नाना रुत्य अनुपान तत्प्रति मुहुर् पीतम नृत्यम सदा लोक जात विकृत श्यामामृतम तन्नीचन। ये जो श्यामामृत है ये श्यामामृत ऐसे प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, यह प्राप्त होगा तब बोल कृपा मोहिनी परवेशितम। श्री संत कृपारूपी मोहिनी के द्वारा, भगवत कृपारूपी मोहिनी के द्वारा, भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामी हूँ, भगवत कृपा भक्त कृपा और भक्त कृपा की अनुगामी हूँ, अतः कृपा मोहिनी परिवेशितम मोहिनी स्वरूप कौन है। यदि कृष्ण लीला प्रेम, कृष्ण प्रेम है अमृत, तो उस अमृत की का परिवेशन करने वाली मोहिनी है कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा सम्मुख नहीं है इसलिए कृष्ण कृपा बड़ी विचारशील है, वो अधिकारी का विचार करती है मुक्तम जगात कृष्ण भक्ति योगम, परंतु भक्तों की कृपा ऐसी है जो कि विचार नहीं करती। अतः कृष्ण कृपा से भी बढ़कर के भक्त कृपा है श्री महाप्रभु पात्रापात्र विचारण निकलते उसको परम दीक्षते। श्री महाप्रभु की जो कृपा है वह कुछ कृपा कुछ अलौकिक है जो कि पात्रापात्र का विचार भी नहीं करती। कृष्ण कृपा से भी बढ़कर के श्री महाप्रभु की कुछ कृपा तो संत कृपा महाप्रभु को मैं कोटि में नहीं रख रहा हूं। ये केवल एक महाप्रभु के साक्षात श्री प्रभु के रूप में प्रभु है, परंतु महाप्रभु को संत कहकर के अपराध नहीं कर रहा हूं। परंतु यहां पर केवल आदेश मात्र की बात कहते हुए कहूंगा कि संत कृपा अधिकार का विचार नहीं करती, जबकि कृष्ण कृपा अधिकार का विचार करती है। कृष्ण नाम अपराध का विचार करते हैं, श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं। कृष्ण नाम अधिकार का विचार नहीं करते परंतु अपराध का विचार करते हैं। परंतु संत कृपा ऐसी है जो कि न अधिकार का विचार करती है न अपराध का विचार करती है। बिना अपराध और बिना अपराधी होने पर भी अपराधी को भी वह अपना लेती है। अतः ये जो कृपा है वो कृपा कोई अपूर्व है। कृपा मोहिनिया परिवेशितम हर लीला कथा ब्रात मृतानंदित तत्पुरम। श्री हरलीला के कथा उसका जो समूह वही है अमृत। श्रीमद भागवती कथा का वर्ण विषय है श्री हरलीला। श्री कृष्ण ही है श्रीमद भागवत के संबंध तत्व। श्री कृष्ण का ही श्रीमद भागवती संहिता में सर्वत्र सर्वत्र वर्णन किया गया है। और इसका प्रयोजन तत्व क्या है? वो प्रयोजन तत्व है कृष्ण लीला के गायन के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद भागवत का एकमात्र तात्पर्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही है। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अतः मृतानंदित अमृतानंदित सत्पुरम संत गण रूपी चोरों को आनंदित करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह श्री हरिलीला ही है। उस श्री कृष्ण प्रेम को ही कृष्ण भक्ति को ही शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से मुक्ति के अर्थ में भी प्रस्तुत कर दिया। हमारे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने जिस समय किसी श्लोक का गायन करते हैं कि तत्व कंपान सुसमी क्षमाओ भूमिया आत्मकृतम विपापम हृदा बपुर नमस्ते जीवे पियो भक्ति पदे से दाय भाव। वहां पर पाठ ही कर दिया महाप्रभु ने सोचा बोले आपने मुक्ति पदे से दाय भाग की जगह भक्ति पदे से दाय भाग क्यों कह दिया? मूल में तो मुक्ति पदे से दाय भाग है, आप भक्ति पदे से दाय भाग क्यों कह रहे हैं? वहां पर भक्ति का अर्थ भी तो मुक्ति ही है। भक्ति का अर्थ मुक्ति से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। पंचम स्कंद में मुक्ति शब्द को भक्तिवासी ही बताया गया है। यहाणाम अपवर्ग चाप भगवती सारे सर्वात्मने अनुरुक्ते अनुलयने भगवती वासुदेव भक्ति योग लक्षणों सर्वेन्द्रिय ग्रंथि रंधन द्वारे यदा है महापुरुष पुरुष प्रसंग पंचमस्कंद का गद्य है। क्या अपवर्ग क्या भगवती सारे भक्त जो अपवर्ग नहीं होता है तो वो क्या है? भक्ति योग लक्षण। तो ये मोक्ष शब्द है मुक्ति शब्द है वह मुक्ति शब्द भक्तिवासी ही है। श्रीमद भागवती संहिता में जहां जहां भी मुक्ति शब्द आया है वहां पर उसका मुक्त प्रज्ञावृत्ति के द्वारा उसका अर्थ भक्ति ही है। क्योंकि भक्ति के द्वारा मुक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाएगी। यथो पश्चय मानस्य भगवंत विभाव सुन शीतम भयम तमोपेति तदपीठांगी सेवया। शीत भय और तम जैसे अपने आप दूर हो जाता है इसी प्रकार यदि भगवत भक्ति की जाएगी तो संसार की निवृत्ति तो आनंदित रूप से अपने आप हो जाएगी। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो नामा भास मात्र का फल है मुक्ति की प्राप्ति। श्री भाव की संहिता निरूपण करती हूँ कि नामा भास मात्र से ही संसार बंधन की निवृत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नाम का कृष्ण भक्ति का मुख्य फल मुक्ति है ही नहीं। श्री कृष्ण भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। प्रेम के अतिरिक्त वह अन्य कोई फल नहीं है। हरि नाम का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्री भागवती संहिता जहां पर अमृत शब्द का प्रयोग करती है वहां पर वह, जहां पर मुक्ति शब्द का प्रयोग करती है वहां पर वह भक्ति के अर्थ में ही उसको उपन्यास करती है। तब कथा अमृतम तत्व जीवन अमृत शब्द यहाँ पर स्वर्गीय अमृत को तुच्छ बना देता है, अमृत शब्द यहाँ पर मोक्षरूप जो अमृत है उसको भी तुच्छ बना देता है। प्राकृत अमृत की बात को जाने दो, अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है, दो ही अर्थ मुख्य है, या तो स्वर्गीय अमृत या मोक्ष, यही अमृत के दो मुख्य अर्थ हैं, और वो दोनों ही अर्थ भक्त के सामने अत्यंत अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य तात्पर्य है श्री हर भक्ति प्रेम भक्ति को प्रदान करना, वही है श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोजन। परंतु श्रीमद् भागवत संहिता मोहिनी है, मोहिनी भगवान का ये स्वभाव रहा कि जिस समय अमृत के कलशे को दैत्यों के हाथ में उन्होंने देखा, उस अमृत के कलशे को लेकर के देवताओं को देने के लिए उन्होंने नेत्र आकुंचन करते हुए कुछ मुस्कुराते हुए कटाक्ष पात सहित दैत्यों से स्पष्ट रूप से कुछ बात कही, और नेत्र आकुंचन पूर्वक ही देवताओं की ओर देख करके भी कुछ बात कह दी। देवताओं की ओर देख करके तो ये बात कही, बोले देवताओं घबराओ मत, मेरा अवतार तुम्हारे ऊपर अनुकूल ग्रहण करने के लिए, तुम्हारे अनुकूल बनने के लिए ही हुआ है, मैं अमृत तुमको ही दूंगा। ये इसी प्रकार शास्त्र श्रीमद् भागवत संहिता मोहिनी स्वरूप को धारण करके स्पष्ट रूप से कहती है, मैं तो आकुंचन पूर्वक कहती हूँ, स्पष्ट रूप से नहीं, कृपा करके कहती है, मैं तो आकुंचन पूर्वक कहती है कि श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य भगवत भक्ति है। इस बात को देवताओं के सामने जो रसिक जन है, उन रसिक जनों के सामने उस पंचायती सभा में सुखदेव जी जहां वर्णन कर रहे हैं, वो उस सभा में ज्ञानी भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, रसिक जन भी बैठे हैं। अब यदि रसिकों की बात को अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी से ही, तो भक्ति रूपी वह पदार्थ ज्ञानियों के हाथ में पड़ करके कहीं विकृत न हो जाए, तो भक्ति रूपी स्प्रहा, मुक्ति रूपी स्प्रहा होकर के वह पिशाची उसके रस को पान कर जाए, जो रस मिलना चाहिए रसिकों को, वह रस उस मुक्ति रूपी पिशाची को मिल जाए, स्प्रहा रूपी मुक्ति की स्प्रहा रूपी पिशाची को मिल जाए। इसलिए उससे बचाने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रथम श्लोक में नेत्र आकुंचन करते हुए श्रीमद् भागवत के मूल तत्वों को जमुना वृत्ति के द्वारा या कहीं संकेत वृत्ति के द्वारा निरूपण कर देती है कि हरलीला कथा ब्रात, ये तो है हरलीला कथा का ये समूह, वह तो है श्रीमद् भागवत का वही विषय, और अमृत अर्थात तृप्त प्रेम वह है प्रयोजन करा, कृष्ण है इसके संबंध तत्व, और कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम वह है अमृत। उस अमृत के द्वारा सत्यरम जो रसिक जन है उसको ही मैं आनंद प्रदान करूंगी, ये श्रीमद् भागवत संहिता का श्री मोहिनी स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता का मूल फल है। परंतु वहां पर दैत्य लोग भी बैठे हैं, मोहिनी जी की सभा में दैत्यगण भी विराजमान है, कहीं दैत्यगण यह ना समझ रहे कि अरे ये तो गया हमारे हाथ से, इसलिए दैत्यों को वंचित करने के लिए मोहिनी भगवान दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं, उनसे तो केवल नेत्र आकुंचन करते हुए भंगिमा मात्र में कहा, परंतु दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम यह ब्रह्मात्मय तत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यं च प्रयोजनम। ये जो बाद में बात कही गई कि सर्व वेदांत सारम यह ब्रह्म में, यहां पर
जो अद्वितीय वस्तु है, उस अद्वितीय वस्तु जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता के द्वारा जो प्राप्त होने वाली वस्तु है, उस एकता के द्वारा प्राप्त होने वाले उस ज्ञान को ही जैसे हम बात में अपनी बात प्राप्त कराऊ तो वस्तु रूप
ब्रह्म और जीव की ऐसे रूप जो ज्ञानियों का परम साध्य मुख्य पदार्थ वह वस्तु द्वितीय तन्निष्ठम कैवल्यिक प्रयोजनम, उस कैवल्य को ही एकमात्र प्रयोजन माने। अद्वितीय जो वस्तु है, अद्वैत जो ज्ञान तत्व है, उस अद्वितीय वस्तु को यदि हम श्रीमद् भागवत का वर्णन से माने और कैवल्यिक प्रयोजनम मोक्ष को हम प्रयोजन माने। ज्ञानियों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय है अद्वितीय वस्तु और ब्रह्म, ज्ञानी की दृष्टि में, केवल ज्ञानी की दृष्टि में, और उनके लिए प्रयोजन क्या है, अद्वितीय वस्तु का श्रवण करके उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, यह है उनका प्रयोजन। भक्तों के लिए श्री कृष्ण लीला कथा ब्रास, यह है वर्ण विषय, और अमृतम प्रेमामृत है उनके लिए प्रयोजन, जबकि ज्ञानियों के लिए अद्वैतम वस्तु द्वितीय जो अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म वस्तु, वह ब्रह्म वस्तु है ज्ञानियों के लिए एक प्रयोजन में एक वर्ण विषय, और कैवल्य जो है वह मोक्ष है उनके लिए एक प्रयोजन। ये बात मोहिनी स्वरूप धारण करके श्रीमद् भागवत के रस तत्वों से के जो अधिकारी नहीं है ऐसे ज्ञानियों को विमोहित करने के लिए ये बात कह दी गई। मूलता है श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य एकमात्र भगवत भक्त नहीं है, वही स्वरूप को धारण करके श्री सुखदेव जी निरूपण कर रहे हैं। इसी तरह से श्री सुखदेव जी के द्वारा जो वस्तु के श्रीमद् भागवत के अंत में यदि इस प्रसंग के साथ में जोड़ दें जो ब्रह्मोपदेश दिया है, उस ब्रह्मोपदेश को भी देखें तो ब्रह्मोपदेश भी एक तरह से वही शास्त्र की मोहिनी रूपता को ही व्यक्त करने वाला। प्रारंभ में नहीं देते रहे क्या प्राण वर्ण थे भीष्म भगवान हरि ईश्वरा, यह श्रीमद् भागवत का मूल पदार्थ वर्ण विषय, और इससे बाद में जो कह रहे हैं कि घटे में यथा काश आकाशत्याग यथा पुनः, बोले जैसे घटके टूट जाने पर आकाश आकाश हो जाता है, श्री विष्णु चतुर्थ पाठ यथा शब्द की पूजा कर रहे हैं। यथा का तात्पर्य है यथा यथम, माने जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप की उसे प्राप्ति हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि घटे के टूट जाने पर जो आकाश था वो महाकाश हो गया, घटाकाश महाकाश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। आकाश तो इतना विभु है कि उसको एक घट कभी भी परिच्छन्न नहीं कर सकता है, केवल अभ्यास मात्र हो गया है। आत्मा तो केवल अध्यास मात्र है, देहाध्यास मात्र है, उस देहाध्यास मात्र की मूर्ति मात्र है। जीव जो है आत्मा जो है वह आत्मा तो विभु है, तो घटे नहीं यथा आकाशा आकाशा क्या यथा पुनः, यथा शब्द इससे यथा के यदि हम अर्थ रहे हैं तो यथा का जो योग्यता अर्थ है, यथा के चार अर्थ वेदांत में व्याकरण में मूल पर कहे जाते हैं योग्यता दीप्ता अनुवृत्ति और सादृश्य, ये जो चार अर्थ लिए जाते हैं इनमें यदि यथार्थ यथा का हम योग्यता अर्थ लें तो जीव की जो योग्यता है उस योग्यता को ही जीव प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से वहां कह रहे हैं कि आम ब्रह्म परम धाम, आगे ब्रह्म जहां पर श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव जी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, वहां पर भी ऐसा लगता है क्या कहेंगे, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य क्या जानने हैं, उस ब्रह्म उपदेश को लेकर के तभी ध्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्या उसका तात्पर्य क्या जानने है क्या, परंतु श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ज्ञान में नहीं है, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य एकमात्र भक्ति में ही है। जैसे जहां पर यह कहा गया है कि आम ब्रह्म, गुरु जी का आदेश हो गया मैं यहां पर विश्राम करूंगा कि आम ब्रह्म परम धाम, आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम परम, आम ब्रह्म मैं ब्रह्म का अंश हूँ। जो ब्रह्म क्या है? परम धाम, परम श्री कृष्ण उनके धाम अन्य कांति मात्र है। आम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म जो है वह पृथ्वी की अन्य कांति मात्र है और मैं साक्षात रूप से उन ब्रह्म का ही अंश हूँ, उनसे अलग नहीं। अतः ब्रह्माहम यूं कहना ये कोई ज्ञानियों की तरह से सोहम कहना नहीं है, ज्ञानियों की तरह से तत्वमसी कहना नहीं है, बल्कि यह प्रतिपादन करना ही है कि तत्वत्वमसी तू उनका ही अंश है। यह प्रतिपादन करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की संहिता में वो उपदेश प्रदान किया गया है। इसीलिए अंत में कहते हैं कि राजन हमने एक हफ्ते कस्तम या पाते यथात्मा पुष्टवान का हरे विश्वात्म। देखिए अंत में एकदम अंतिम जो श्लोक है शुक्रचिन का, वो अंतिम श्लोक फिर भक्ति में संगमित हो जाता है। हरे विश्वात्म चेतन फिर भूले श्लोक मिथ्यति, बोले जहां पर हरि की लीला को स्मरण कर लिया फिर सुन लिया, इस लीला से बढ़कर के और कौन सी दूसरी वस्तु हो सकती है? तो श्रीमद् भागवत का तात्पर्य चाहे वो ब्रह्मोपदेश हो, चाहे जहां जहां भी ब्रह्म तत्व का जैसा लगता है कि ब्रह्म तत्व का उपदेश किया गया है, वो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म तत्व का उपदेश है, परंतु सत्यतः वो ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं है। वह मूलतः श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का ही वर्णन करने वाला, कृष्ण की अंगकांति का ही वर्णन करने वाला वह उपदेश है। और श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन एकमात्र कृष्ण प्रेम में ही है। कैवल्य शब्द का जो भक्ति परक अर्थ किया गया वह अर्थ ही सर्वशास्त्र समृद्ध है, सर्वशास्त्र
वृंदावन चार्यवर्ण धीमता अच्युतलाल भक्ति नो व्याख्यातम कृष्ण सेवनम। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, आज बहुत रात हो गई, अभी ठाकुर जी की आरती भी नहीं हुई है, इधर विद्वाना का सुंदर सुंदर भाषण हम लोग सुन रहे हैं। मैं अब संचालक महोदय श्री श्री वासुदेव कृष्ण
आप सुनिए तो इतना घबराते क्यों है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे सुनिए तो पहले। समय कम है, फिर भी अंत में हमारे पंडित जी आए, क्या नाम? विद्वान आदमी है, समय का मूल्य भी जानते हैं, क्योंकि फिर भी समय तक नहीं आए। सभी लोग भारतीय समय नहीं किंतु पंडित जो व्यक्ति होते हैं समय का मूल्य कदर जानता है। कभी मैं इसे निवेदन करता हूँ खूब संक्षेप रूप में 5 मिनट में अपना वही पद
अध्यक्ष बात बोलने के लिए मैं
मंदन मथिलम हर जयती चंद में युद्ध में महामुनिंद्राचार्य वर्तमान विराजमान अध्यक्ष महानुभाव एवं समुपस्थित विद्वान एवं समुपस्थित माँ और बहन लोगों, बहुत भोर से ही मैं जो प्रकृति आपका विषय है उससे मैं थोड़े से ही अपनी वाणी को अलंकृत करता हूं। आपका जो विषय है कैवल्य का प्रयोग एवं इसको खंडन का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये शब्द थी उसको नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? सिर्फ विचार करिएगा विद्वान लोगों, पहले क्या श्लोक है? सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम् वस्तु द्वितीय सन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम्। हो गया, ध्यान दो सब विद्वान लोगों, फिर यही श्लोक है कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत निश्चते तदरसा मृत सत्य नान्य दूसरे श्लोक पर किसी का ध्यान नहीं दे गया। विचार का ये विषय है इधर कि केवल क्या है, आचार्य लोगों ने अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्या व्यासिषाम पते ईसमस्मानीसम इससे कैवल्या व्यासिषाम पते थे। आचार्य लोग क्या कहते हैं जिन्होंने ध्यान से करना, केवल केवलस्य भावः कैवल्यम या गोवचन ब्राह्मण आदित्य कर्मणि से प्रत्यय हो रहा है। केवल किसको कहते हैं? थोड़ा विचार करो, संघात निवृत्ति, अध्यास निवृत्ति, प्रत्यापत्ति रूपम, प्रथमम फलम, अत्र कैवल्य पद वाच्यम। केवल ऐसा मत समझना कि केवल के पति कैवल्य पति भगवान नहीं है, अन्यथा कैसे कुंती जी कह रही है नवो अचिंतन वित्ताय निवृत्त गुरुवृत्त आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। गजेंद्र क्या कर रहा कह गया है, आत्मा रामाय नवो कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संबिले। भागवत का एक भी अक्षर अनर्थक नहीं है, इसलिए कैवल्य मार्ग भी एक मार्ग है, लेकिन उसका अध्यास निवृत्ति संहास निवृत्ति प्रत्यापत्ति रूप प्रथम फल है। इसके पूर्व में तो दुख ही दुख है, ज्ञान मार्ग स्वरूप योग्यता को प्रदान करता है। जब स्वरूप योग्यता आ जाती है तो इसके बाद में क्या होता है कि जिस आनंद का तुम्हारे बीच में क्रोधान हो रहा है उसका आनंद का आदर भजनानंद के प्रकार से होता है। जब भजनानंद के प्रकार से आनंद का आविर्भाव होता है तो भगवान में भक्ति होती है, भगवत साहित्य होता है और फिर भगवत गुणों का उस भक्तों में प्रस्फुटन होता है। इसलिए कैवल्याद्या आश्रिता उतते हैं, इसलिए कैवल्य भी एक मार्ग है गोष्कार के लिए एक मुख्यान्य केवल। लेकिन भागवत सिद्धांत से परम फल क्या है तो गोपाल तापनी उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि एक जो कृष्ण है और ईशज है और वसी है सर्वज है जो और सर्वरा जो विभाती बहुता विभाती उनका जो भजन करते हैं उनको ये नृत्य और सरस्वती भक्ति मिलती है। नृत्य और भगवान गीता में भी ऐसा कहा गया है कि तवेव सरण दृष्ट सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति तत्पर शाश्वत होते। तो देखो शाश्वती जी और गोपाल तापनी की शाश्वती सिद्धि का समन्वय करो, इसलिए कैवल्य पद केवल आपका प्रत्यापत्ति रूप प्राथमिक फल है, उसका अध्यास निवृत्ति में तात्पर्य है, और केवल जो है वो संघात निवृत्ति में तात्पर्य है। भागवत का तो परम फल निरंकल्प तरुण गलतम फलम, इसके अनुसार केवल भागवतम रस मालयम, इसलिए आगे भी अत्याचार्यों ने किए आ अति तुच्छ आदि आम ईश्वर अति तुच्छ है लया मोक्षर यशमान। उसका भी कोटी में उसकी तुच्छता है, लेकिन ठाकुर जी मुक्ति के पति नहीं है, मुक्ति का दान नहीं करते, अथवा वे ज्ञान कोई पक्ष नहीं है, इसका खंडन कोई विद्वान नहीं कर सकता है, अन्यथा भागवत का खंडन हो जाएगा। कई वर्ग ने नाचाए और कई वर्ग ने पताए, तुलसी जी की वाणी को कौन खंडन कर सकता है। इसलिए शाश्वती जो भक्ति है और सिद्धि है, वो तो कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं उन्हीं के लिए मिलती है। अन्यथा जितने जो है वो भजनानंद के जो वाक्य भागवत में, उनको यदि परम सत्य नहीं कहोगे आप, तो नपरिवसंत के नपवर्ग मतीश्वर से चरण सरोज हंस गुण संगम से चक्र शिक्षा संगति होगी। निवृत्ता विदुषेवता रमनते गुणान कथने की क्या संगति होगी। परम भी आशांत नोने भगवान सर्वाथा इत्यादि कथनों की क्या संगति होगी। इसलिए परम फल गोर है और प्रार्थना